ओम शांति। आज का ये सेशन ऐसे तो स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर है, लेकिन हमने इसमें आधा घंटा एक एडिशनल प्रोग्राम डाला है। कल ही ये डिसाइड किया था, मुझे कहा गया कि आधा घंटा आप दादी प्रकाशमणि के ऊपर लो, क्योंकि 25 अगस्त को दादी प्रकाशमणि की पुण्यतिथि है। 25 अगस्त 2007 को उन्होंने अपना साकार शरीर छोड़ा था, और कल शाम को इसी उपलक्ष में हमारे जो नीचे के कॉम्प्लेक्स है शांति वन, वहां एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां 15,000 लोगों का एक बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम हुआ था। तो क्योंकि दादी की पुण्यतिथि भी थी, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम लोग यहाँ जो दो कोर्स कर रहे हैं, एक सीनियर ऑफिसर्स के लिए इंस्पिरेशनल लीडरशिप और जेसीओस और इंस्पेक्टर्स के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट, तो ये दोनों बातों में दादी प्रकाशमणि सबसे आगे थी, चाहे वो एक लीडर के रूप में, चाहे वो खुद एक सशक्त आत्मा थी। तो ये आधे घंटे का एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसी लिए बनाया है कि उनकी जीवन यात्रा और क्या विशेषताएं थी जिसके कारण वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, जब से उन्होंने 1969 में इसका चार्ज लिया और करीब 40 साल 2007 तक वो इसकी मुख्य संचालिका थी, एक कंट्री ब्रह्मा कुमारी इसकी सिर्फ भारत में ही ब्रांचेस होती थी 1969 में जब वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनी, और 2007 में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा कुमारी 120 कंट्री से भी ज्यादा में अपने ब्रांचेस थे। जब वो थी, जब उन्होंने इसका कार्यभार संभाला तो कुछ हजार स्टूडेंट्स थे आज, और जब उन्होंने 2007 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कई लाख इसके स्टूडेंट्स हो गए। तो एक कुशल नेतृत्व और इतनी बड़ी यात्रा जिसमें इस संस्था को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया, तो उसके जीवन यात्रा पे ये एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि कैसे दादी जी सारा कारोबार संभालती थी। तो सबसे पहले तो उनका बचपन, उनका जन्म 1921 में हुआ था, और जैसे आप लोग में से कुछ लोग ने इस ब्रह्मा कुमारी का अगर इतिहास थोड़ा मालूम हो तो 1936 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, की शुरुआत हुई, और ये हुई सिंध हैदराबाद में जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, तो भारत और पाकिस्तान एक था। तो मात्र 14 वर्ष की आयु में दादी जी पहली बार इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई। तो उनके बचपन के बारे में एक 2-3 मिनट का एक वीडियो क्लिप है, मैं वो लगाऊंगा, जो कि हमारे कल आप लोग ने जो रात को प्रोग्राम देखा था सूरज भाई और रूपेश भाई, तो उन्हीं के प्रोग्राम से लिया गया है, जिसमें दादी प्रकाशमणि के बचपन के बारे में बताया गया। इसका साउंड करना।
पहले मैं उनके जन्म से जुड़ी हुई बातों को जानना चाहूंगा ब्रदर जी, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, ताकि हमारे दर्शक उनके बाल्यकाल से भी परिचित हो सकें।
बहुत अच्छी बात है, और महान आत्माओं का इस संसार में अवतरण कुछ महान कार्यों के लिए ही होता है, उनका जीवन ही सबके लिए आदर्श होता है, और वास्तव में तो बचपन से ही उनकी महानताएं उनके जीवन से झलकने लगती हैं। तो ऐसी दादी जी बचपन से ही, जैसा आपने भी कहा, 1 जनवरी 1921 ये महान आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई, और तब से इनके घर में भी बहुत अच्छा माहौल हो गया, और इनके पिताजी ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, यद्यपि वो व्यापारी थे, वो पहले से ही कहने लगे थे कि ये सच्ची मीरा है हमारे घर में, नाम था रामा, बहुत प्यार से रामा रामा सब लोग उनको कहते थे। पढ़ने लिखने में वो बहुत होशियार थी, और पहले से ही बहुत सुशील, बड़ी चरित्रवान, बहुत गंभीर और सबको खुश रखने वाली भी थी, यानी उनकी जहाँ उपस्थिति रहती थी वहाँ सभी बड़े खुश रहते थे, वो सबको आनंदित रखती थी। तो बचपन से ही ये मुख्य क्वालिटीज उनके अंदर देखने में आने लगी थी। बस बाबा का सत्संग प्रारंभ हुआ, और बाबा से ये सभी परिवार जो बाबा के संपर्क में आए कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, कंसर्न थे, बाबा को पहचानते थे, तो बस एक धूम मची कि दादा बहुत अच्छा गीता ज्ञान दे रहे हैं, वहां जाते ही भगवान के दर्शन होने लगते हैं, चलो तुम भी चलो तुम भी चलो, और बड़ों से ज्यादा आकर्षित हुए छोटे बच्चे। तो दादी गीता हाई स्कूल में थी, तभी दादी जी बहुत आकर्षित हुई बाबा की तरफ और उनके सत्संग में आने लगी, और बाबा ने उनको योग्य देखकर, देखिए बहुत बड़ी चीज थी, सत्संग में लेक्चर देने का कार्य उनको सौंप दिया, दो तीन औरों को भी सौंपा था।
तब दादी जी की उम्र क्या रही होगी?
दादी की उम्र लगभग बस 15 वर्ष थी, और तब हाई स्कूल कर लिया फिर दादी ने, और दादी पूर्ण रूप से यज्ञ में ही समर्पित हो गई। उनके लौकिक पिता ने बहुत खुशी से, क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि ये घर में नहीं रहेगी, ये ग्रस्त जीवन वाली आत्मा नहीं है, तो बहुत खुशी से उनको छुट्टी दी कि तुम दादा के साथ रहो, सत्संग कराओ और अपने भाग्य को बहुत ऊंचा उठाओ। बहुत
ये उनके बचपन की बात थी कि जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली थी और मात्र 14 वर्ष में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई। तो 1936 में जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो शुरू में इसका नाम ओम मंडली था, और उस समय करीब 400 लोगों का एक ग्रुप बना, और वो 400 लोग फिर एक अलग, जैसे एक अलग कम्युनिटी में रहकर वो अपना सारा दिनचर्या चलाते थे। ये 400 लोगों में बहुत सारे बहुत छोटी आयु में बच्चे भी थे, तो दादी प्रकाशमणि को, खुद वो केवल 14-15 वर्ष की थी, ब्रह्मा बाबा ने उनमें वो विशेषता देखी और उनको शुरू से यज्ञ में, जैसे सूरज भाई ने कहा, प्रवचन देने का, चाहे टीचर के रूप में वो छोटी कन्याओं को संभालने का, ये भी एक रोल दिया। तो सबसे पहले की कुछ उनको जो बड़ी जिम्मेवारी दी उसमें था कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्योंकि अब इतना 400 लोगों का एक ग्रुप है और ये बिल्कुल ही अपने आप आइसोलेटेड होके, इनका सिर्फ एक ही काम था ज्ञान और योग। अब 400 लोगों का एक कम्युनिटी हो तो उस, और कोई बाहर की दुनिया से ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं था, तो उनका खाने पीने का खर्चा और इतने 400 लोगों का कंटिन्यूस करीब 14 वर्ष वो लोग वहां रहे, तो वो सारा चीज, वो सारा खर्च जो हुआ वो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में, क्योंकि वो डायमंड के मर्चेंट थे, जब उन्होंने निश्चय किया कि अभी मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य में समर्पित होना है, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, एक 8 बहनों की ट्रस्ट बनाया, 8 बहनों का संगठन बनाया, और ये सारी प्रॉपर्टी उस बहनों के नाम पर डाल दी कि उनके द्वारा इस संस्था का पालन पोषण होगा और कारोबार चलेगा। उन 8 बहनों में एक बहन दादी प्रकाशमणि थी। तो देखो, केवल 15 वर्ष की आयु में उसमें वो प्रतिभा थी कि जो फाउंडिंग फादर थे ब्रह्मा बाबा, उन्होंने भी पहचाना कि ये आत्मा विशेष है, और उनको उस 8 जो बहने हैं उन संगठन में उनका भी नाम था। 14 वर्ष ये ईश्वरी विश्वविद्यालय 1950 तक उस हैदराबाद में ही था। 1947 में पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो इलाका पाकिस्तान में रहा। बंटवारा होने के बाद भी 3 वर्ष ये लोग वहां रहे, और 1950 में फिर वो वहां से शिफ्ट हुए और उन्होंने माउंट आबू राजस्थान में जो मुख्यालय वो शिफ्ट हुआ। उसके 1-2 साल के बाद, क्योंकि अभी तक तो सब एक साथ रहते थे, बाहर वालों से ज्यादा उनका कनेक्शन नहीं था, उसके बाद फाउंडिंग फादर ने उनको कहा कि अभी आपको बाहर जाकर जन जन की सेवा करनी है, सबको ये स्पिरिचुअल नॉलेज देना है, सबका जीवन कल्याण करना है। तो थोड़े थोड़े करके वो लोग अलग अलग जगह गए, लखनऊ में गए, दिल्ली में गए, बॉम्बे में गए, बट बहुत थोड़े थोड़े। उस समय एक इनविटेशन आया, जो एक वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी जो कि जापान में थी 1954 में, तो उस समय ब्रह्मा बाबा ने 3 लोगों की टीम, 2 बहनें एक भाई, इन लोगों को जापान भेजा और दादी प्रकाशमणि को उसका हेड बनाकर भेजा। तो देखो, उस समय जब बहुत छोटी संस्था थी, मुश्किल से कोई 1-2 राज्य में थोड़ी बहुत सेवा होती थी, उस समय विदेश, वो भी जापान में जाकर सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये ऐसे ही है जैसे कि थोड़े दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एक जो अंतरिक्ष का यान बनाया है वो कहां लैंड होगा, चांद पे, वो भी चांद के ऑपोजिट साइड पे, और इतने वर्षों में हम पहली बार सोच रहे हैं कि शायद वो लैंड हो जाएगा, और हम सब होपफुल है और हमें उम्मीद है कि वो पक्का लैंड हो जाएगा। अब इतने वर्षों की मेहनत के बाद बहुत मुश्किल से हम चांद तक पहुंचे। मैं बोलूं कि इस समय हम एक यान भेजें और वो प्लूटो में लैंड हो, जो सबसे दूर का प्लैनेट है, तो आप बोलेंगे भाई अभी तो वो तो बहुत आगे की बात है, अभी तो हम लोग बड़े मुश्किल से यहां पहुंचे। तो उस समय बहुत थोड़ी सेवाएं होती थी, भारत में ही बड़ी मुश्किल से होती थी। तो इतना दूर विदेश जापान में जाना, तो बाबा ने उनमें वो काबिलियत देखी और बाबा ने उनको वहां भेजा। 1952 से जब से ये लोग सब भारत के अलग अलग कोने में गए, वहां सेवाएं की, वहां नए नए ब्रह्मा कुमारी के राज्यों का मेडिटेशन ब्रांचेस बनने लगे, तो 52 से 69 तक दादी प्रकाशमणि बहुत एक्टिव, और जहां बाबा कहते थे कि अभी आपको लखनऊ जाना है, आपको इधर जाना है, आपको उधर जाना है, रात दिन भाग दौड़ करती रहती थी, बहुत मेहनत करती थी। विशेषकर वो बॉम्बे में सेवाएं करती थी, लेकिन इतने वर्षों में बाबा, उस समय बहुत सारी टीम थी लेकिन दादी प्रकाशमणि के ऊपर बाबा की विशेष नजर थी, क्योंकि बहुत ही एबल थी, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा थी, तो बाबा जहां भेजते थे दादी जाती थी। 1969, ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी कि बाबा चाहते थे कि पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे विश्व की सेवा हो। तो बाबा ने उनको 14 वर्ष, शुरू के 14 वर्ष ये ग्रुप ने क्या किया, सिर्फ ज्ञान योग के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाया, और वो लोग कुछ नहीं करते थे, कोई और बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था, जो भी खाना पीना होता था 2-3 लोगों का काम था बाहर से सब लाना, और वो एक क्लोज्ड कम्युनिटी में रहते थे। जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग का क्या है, अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो बिल्डिंग आप बड़ी बना सकते हो। इसलिए बाबा ने भी शुरू के 14 साल उनको सिर्फ योग, ज्ञान और योग के द्वारा स्पिरिचुअली एकदम पावरफुल बनाया। उसके बाद बाबा ने कहा अब आपको जाके पूरे देश की, समाज में हर जगह जाके सेवा करनी, तो ये अलग अलग जगह गए। अब ब्रह्मा बाबा भी एक पिता के रूप में जो प्यार देता था, जो पालना करता था, वो तो सब मिस करते हैं। तो जब भी कभी वो माउंट आबू आते थे, कोई ग्रुप को लेकर आए, कोई पार्टी को लेकर आए, तो उनकी सबकी दिल होती थी कि अगर 4 दिन के लिए आए हैं तो लगता था कि 1-2 दिन और ठहर जाए। आप लोगों को तो नहीं लगता 4 दिन में आपको भी जाना कि 1-2 दिन और ठहर जाए? तो उस समय तो खुद ब्रह्मा बाबा थे, वो इतनी पालना देते थे, तो उनको होता था कि नहीं 2 दिन और, लेकिन बाबा कहता था नहीं अभी आप इधर आए हो, बादल जैसे आता है पानी भर के वापस जाता है, बरसता, आप चार्ज हो, वापस जाओ और सबकी सेवा करो। तो बाबा उनको एक्स्ट्रा नहीं रहने देता था। 16 जनवरी 1969, तो दादी उस समय एक बॉम्बे का एक ग्रुप लेकर आई थी और उनको वापिस जाना था, वापिस जाना था, तो ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाशमणि को कहा कि आपकी पार्टी को भले जाने दो, आप रुक जाओ। तो पहली बार उल्टा हुआ है ना, हर समय वो लोग बोलते थे हम रुकना चाहते, बाबा बोलता था नहीं जाओ, इस समय बाबा ने बोला नहीं आप रुक जाओ, भले पार्टी जाए। तो दादी रुक गई और 18 जनवरी को बाबा रोज सवेरे मुरली चलाता था, जो ज्ञान की क्लास चलाता था, उस दिन बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो सवेरे की क्लास नहीं चलाई। तो शाम को बाबा ने सबको विशेष बुलाया, बोला कि क्योंकि बच्चों से सवेरे नहीं मिले, ज्ञान की मुरली नहीं चलाई, इसलिए शाम को बाबा क्लास कराएगा। तो सभी आए, बाबा ने क्लास कराई, उसके बाद बाबा अपने कमरे में चले गए और भोजन के बाद जब बाबा कमरे में थे, तो दादी जब उधर थी तो दादी को एक बहुत स्ट्रांग प्रेरणा आई कि मैं बाबा के पास जाऊं। उस समय दादी बाबा के पास रूम में नहीं जाती थी, लेकिन उस समय दादी को एक खींच हुई, तो दादी बाबा के पास गई। करीब रात के 9 बज रहे थे, तो बाबा बिस्तर पे लेटे हुए थे और थोड़ा उनको चेस्ट पेन हो रहा था, तो दादी जब गई तो दादी से बाबा मिले, उनके हाथ में हाथ रखा, बहुत पावरफुल दृष्टि दी और बाबा अव्यक्त हो गए। तो पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी बाबा ने दादी के हाथ में दे दिया। अब ये है 1969 की बात। उस समय तक सभी जितने भी बहने थे वो लोग सब जैसे कि एक सोल्जर के रूप में, कोई ऑर्डर किया हम यहां से आ गए, ऑर्डर किया यहां से आ गए, और इस सब पूरी संस्था का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो पिलर था वो ब्रह्मा बाबा थे। तो अचानक वो पिलर चला गया, तो कई लोग ऐसा सोचते थे कोई संस्था में जो एक आधार स्तंभ होता है अगर वो चला गया तो क्या होगा संस्था का, तो समझते थे संस्था शायद अभी खत्म हो जाए। तो एक दुनिया के हिसाब से कहेंगे एक क्राइसिस था, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रह्मा बाबा ऐसे चले जाएंगे। लेकिन उस समय दादी जी की जो धैर्यता थी, जो हिम्मत थी, जो मतलब क्राइसिस के अंदर पता चलता है व्यक्ति का अपना इनर क्वालिटी, तो दादी ने जितनी स्टेबिलिटी से पूरे यज्ञ को संभाला और उसको फिर आगे बढ़ाया, सिर्फ संभाला नहीं उसको आगे बढ़ाया, वो दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। क्योंकि उस समय कोई भी नहीं सोचता था कैसे ब्रह्मा बाबा चली जाएंगे, तो बाबा ने दादी के हाथ में सारी जिम्मेवारी दी और दादी 1969 से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के चीफ बनी। दादी के साथ एक और हमारी बड़ी बहन जिसको हम लोग दीदी मनमोहिनी बोलते हैं, ये दोनों विशेष माउंट आबू में रहकर ये पूरा ब्रह्मा कुमारी का कारोबार संभालने लगे। अब भारत में तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस थे, कई जगह पे ब्रांचेस थे। 1971 में पहली बार ब्रह्मा कुमारी बहने बाहर गई, यूरोप में, विशेष यूके में सबसे पहले ब्रांच स्टार्ट हुआ। और उसके बाद विशेष दादी जानकी जी, हम लोग ने उद्घाटन में उनका वीडियो मैसेज भी सुना था, तो बाबा ने दादी जानकी को विशेष विदेश की सेवा के लिए भेजा और विदेश में कुछ स्थानों पर बाबा के सेंटर्स बने। उस समय अमेरिका में कोई सेंटर्स नहीं होता था, तो दादी प्रकाशमणि का एक टूर प्लान बना जिसमें दादी प्रकाशमणि अमेरिका जाएगी। और उनके जाने के बाद कुछ जगह पे प्रोग्राम्स किए और कुछ भाई बहन ऐसे निकले जिनके कारण वहां फिर पहली बार ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन सेंटर बने। तो वो जो शुरू में जो भाई बहन आए थे, तो उन्होंने उनके अपने अनुभव होते थे, वो बोलते थे कि जहां वो रहते थे उनको प्रेरणा आती थी कि आज उस हॉल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, उनको किसी ने इन्वाइट नहीं किया, लेकिन दादी जी की इतनी रूहानी पर्सनैलिटी थी कि जब वो उधर वो प्रोग्राम कर रहे थे तो आसपास कई लोगों को ऐसा संकल्प आता था कि यहाँ कोई बहुत महान आत्मा आई है और कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो वो लोग खींचे आते थे। और वैसे ही कुछ आत्माएं थी जिनको दादी की इतनी प्रेरणा आई, तो उनको फिर उन्होंने निश्चय किया कि अभी हमें अमेरिका में भी राजयोग का मेडिटेशन सेंटर बनाना है। अब कोई एक नई जगह पे सेंटर बनाना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए ना, परमिशन किससे लेंगे, नहीं वहां की गवर्नमेंट से तो जो लेना है, लेकिन यहां भी ऑर्गेनाइजेशन से भी परमिशन लेंगे ना। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में परमिशन लेते हैं जो हेड है, तो हेड कौन थी, दादी प्रकाशमणि। तो उस समय उनके साथ एक भाई थे हमारे बहुत वरिष्ठ भाई, रमेश भाई। तो रमेश भाई ने बोला, दादी इन लोग का सबका संकल्प है कि हमें यहां एक मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट करना चाहिए। तो दादी जी ने कहा, अब देखो कैसे एक लीडर, दुनिया में भी लीडर होते हैं, लेकिन दादी की क्या विशेषता थी। दादी जी ने कहा कि हमें परमिशन लेना है। तो रमेश भाई बोला, परमिशन किससे लेना है। बोला, परमिशन माउंट आबू मुख्यालय, हमें मुख्यालय से परमिशन लेना है। तो रमेश भाई ने बोला, दादी चीफ तो आप ही हो, तो आप किससे परमिशन ले रहे हो। बोला, नहीं भले मैं चीफ हूं लेकिन आज मैं माउंट आबू में नहीं हूं, तो हमें माउंट आबू में, क्योंकि दीदी मनमोहिनी उस समय इधर थी, तो बोला माउंट आबू से हमें परमिशन लेना है। तो आज कभी ऐसा हो सकता है, कोई चीफ हो जिसको भी परमिशन देनी हो वो किसी और से परमिशन लेगा। तो देखो ये दादी की विशेषता थी, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका जो सम्मान था कि माउंट आबू मुख्यालय है, मुख्यालय से परमिशन लेना। और मुख्यालय में फिर फोन किया गया, फिर दीदी से बात हुई, फिर दीदी ने भी यही राय रखी कि हमें यहाँ नया सेंटर बनाना है। तो फिर अमेरिका में वो सेवाएं शुरू हुई और स्टार्ट हुआ। तो उनकी एक बहुत ही डिवाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सनैलिटी, तो सेवाएं आगे बढ़ती गई। 1983 में जो माउंट आबू में आप लोग में से कुछ लोगों ने देखा होगा, ये ओम शांति भवन, कितने लोगों ने देखा ओम शांति भवन, अच्छा काफी आधे लोगों ने देख लिया। तो इसका कंस्ट्रक्शन और इसका इनॉग्रेशन 1983 में हुआ। इस समय पहली बार दादी जी कैसे टीम को लेकर चलती है, क्योंकि बहुत कम रिसोर्सेस थे और इस संस्था के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा हॉल बनाना उस समय के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और कैसे सभी को मिलाकर सबके सहयोग से, है ना, आज भी जो पुराने लोग हैं वो इतने गर्व से कहते हैं कि ये जो ओम शांति भवन बन रहा है इसमें हमने भी कुछ पत्थर उठाया, कुछ ईंट उठाया, मतलब सभी के सहयोग से, सबको मिलाकर सबके सहयोग से इतना बड़ा ये ओम शांति भवन बना, क्योंकि उस समय इतने सारे रिसोर्सेस नहीं थे। तो ये भी देखो दादी प्रकाशमणि की एक टीम वर्क, कैसे हम सबको एक संगठन करके सबको उमंग उत्साह दिलाकर ये कार्य संपन्न किए। ये जब ओम शांति भवन बना तो उसके बाद से बहुत बड़े स्तर पर सेवाएं हुई। और एक लीडर की एक विशेषता होती है कि वो उसका एक भविष्य का विजन होता है, वो भविष्य को स्पष्ट देख सकता है कि आगे क्या होने वाला है और किस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो दादी प्रकाशमणि का ये बहुत स्ट्रांग ये था कि भविष्य में पूरे विश्व का कल्याण करना, वर्ल्ड की सेवा करनी, ऐसा नहीं कि थोड़ा एक गांव एक दो, नहीं, पूरे वर्ल्ड की हमें सेवा करनी। तो अगर पूरे वर्ल्ड की सेवा करनी है तो पूरे वर्ल्ड का कारोबार आज कौन संभालता है? तो यूनाइटेड नेशंस ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कारोबार पूरे वर्ल्ड के चीजों से संबंधित रखता है। तो दादी प्रकाशमणि का ये स्ट्रांग ये था कि हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है तो हमें ऐसी संस्था के साथ मिलकर करनी है जो पूरे विश्व के लिए कार्य करती है। तो यूनाइटेड नेशंस से 1982 से 87 के बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए जिसके कारण करीब 7 अवार्ड्स यूनाइटेड नेशंस ने ब्रह्मा कुमारी को दिया, 6 तो ऑर्गेनाइजेशन को दिया और 1 व्यक्तिगत दादी प्रकाशमणि के लिए दिया। तो इन सालों में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए और जो ये ओम शांति भवन बना इसमें 3 साल लगातार यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हुए और जिसमें पहली बार यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया। अब यूएन में सबसे बड़ा जो होता है वो वहां का सेक्रेटरी जनरल होता और तब भारत में गवर्नमेंट की आंख खुली क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम के लिए आया। तब सब लोग ने सोचा भाई ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या कार्य कर रही। तो यूएन से मिलकर जो कार्य किया उसके कारण फिर ब्रह्मा कुमारीज यूएन के साथ भी एक एनजीओ के रूप में जुड़ी और बहुत फिर विशाल स्तर पर कार्य करने के निमित्त बनी। तो दादी जी की विशेषता थी कि बड़े बड़े संगठन को कैसे सबको मिलाकर कार्य करना। तो देखो छोटा प्रोग्राम होता थोड़े लोगों को मिलाकर करना इजी होता लेकिन बहुत बड़े प्रोग्राम बहुत बड़े दूर दूर लोग हैं सब लोगों को कनेक्ट करना और उनको जोड़कर कार्यक्रम करना। इसमें सबसे पहले हमारी जो जैसे सिक्योरिटी विंग है वैसे यूथ विंग थे तो 1985 में सबसे पहले यूथ विंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा यूथ रैली जो पूरे भारत के अलग अलग जगहों से यूथ रैली पद यात्रा रखी कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक। तो कश्मीर से भी आए तो ईस्ट से भी आए तो वेस्ट से भी आए। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का संचालन करना उसका कोऑर्डिनेशन करना उसका प्लानिंग करना ये दादी की विशेषता थी। और उसके बाद फिर एक से एक कई सारे ऐसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए गए। 2000 के बाद दादी को अचानक ऐसा ख्याल आया कि अभी तक तो प्रोग्राम बड़े करते तो हजारों आते लेकिन कोई ऐसे प्रोग्राम करे जिसमें लाखों आए। तो फिर पहली बार गुजरात में फिर अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें लाख से भी ज्यादा लोग आए और उस समय एक सीरीज रखी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की। तो देखो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने के जो विजन है और उसको करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए जो संगठन का सहयोग चाहिए वो दादी में हर समय था। हम जिस कैंपस में हैं, क्या नाम है इसका, ज्ञान सरोवर, तो इस कैंपस का कंस्ट्रक्शन 92 से 95 के बीच में हुआ और ये कैंपस जब बन रहा था तो मैंने इसे एक बार पहले भी कहा था कि ये एकदम बंजर पहाड़ी थी। उस समय कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतना सुंदर ऐसा कैंपस बनेगा। अब इतना बड़ा कैंपस बनने के लिए बहुत सारा खर्चा भी होगा बहुत सारे लोगों की भी आवश्यकता होगी बहुत सारा सहयोग भी चाहिए होगा और संस्था के पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे। तो उस समय राजस्थान का गवर्नर श्री चिन्ना रेड्डी वो इधर आए और उन्होंने दादी जी से यही पूछा कि इतना बड़ा आप प्रोजेक्ट ले रहे हो आप लोग कोई फीस भी नहीं लेते किसी से कोई पैसा नहीं लेते तो आप लोग ये प्रोजेक्ट बनाओगे कैसे। तो दादी जी ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया बोला कि उस समय 60-70 हजार कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे तो बोला कि हमने सबने डिसाइड किया हर एक व्यक्ति हर एक दिन 1 रुपया भंडारी में डालेगा एक व्यक्ति 1 दिन 1 रुपया। अब ऐसे देखो तो 1 रुपया देना ये तो बहुत छोटी बात है लेकिन एक संगठन का सहयोग इतने सारे लोगों का संगठन सब लोग 1-1 रुपया दिया तो वो संगठन की शक्ति से वो फाइनेंस भी आया और इधर के जितने कार्य करने वाले हमारे ही बहुत सारे इंजीनियर भाई आर्किटेक्ट हो चाहे डिजाइन वाले हो चाहे लेबरर्स हो सब लोगों ने मेहनत करके ये ज्ञान सरोवर को बनाया। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्थूल सहयोग लेना ये दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं करती है लेकिन उस समय एक और विशेष बात कही बोला सभी मेडिटेशन सेंटर में हर दिन 15 मिनट इस प्रोजेक्ट के प्रति सभी को मेडिटेशन करना है, सभी को शुभ भावनाएं देनी है, वाइब्रेशन देना है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। अब अगर हम लोग बॉम्बे में बैठे हैं और हम लोग बॉम्बे में इस प्रोजेक्ट के प्रति शुभ भावना भेज रहे हैं, तो इधर कैसे मदद मिलेगी? क्या कोई ईंट उठ के इधर से इधर आ जाएगी? कैसे फायदा होगा? फायदा होगा? सब लोग अलग अलग जगह पे इस प्रोजेक्ट के प्रति शुभ भावना भेज रहे हैं, तो इससे कैसे फायदा होगा इस प्रोजेक्ट को? हाँ, वाइब्रेशन तो ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन से फिजिकल काम तो नहीं होगा ना? क्या होगा? पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन पॉजिटिविटी से भी कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा ना? तो क्योंकि कभी कभी क्या इंटेलेक्चुअल लोग है ना, बहुत सोचते हैं, हम समझते हैं कि सबकी शुभ भावना होगी तो कार्य सफल होगा, लेकिन कैसे होगा? तो मेरे मन में भी ये प्रश्न जरूर था कि हम करते तो हैं और ये डायरेक्शन है और हम सब दिल से सब जगह सब सेंटर्स में सब जगह से ये रखा था 15 मिनट सबको इस प्रोग्राम के प्रति मन सा योगदान देना। कुछ समय के बाद मैं एक भाई से बात कर रहा था, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बहुत 4-5 साल हो गए, तो जब मैं उस भाई से बात कर रहा था तो वो बता रहा था कि जब इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं तो फाइल गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में जाती है और बहुत टाइम लगाते हैं। राजस्थान में एक बात बोलते हैं, सरकार उसको कहते हैं जो सरक सरक कर चलती है। तो कोई फाइल होती है तो कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, कितना टाइम लगता है, कौन उसको पकड़ के रखता है, कौन, तो ऐसे ये फाइल भी कहीं अटकी हुई थी। तो जब वो भाई गया तो उस डिपार्टमेंट में एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर था जो कि रिटायर होने वाला था, अगले दिन वो रिटायर होने वाला था। जब उसको थोड़ी सी बात की तो उसको एक प्रेरणा आई कि मुझे इस प्रोजेक्ट को मदद करना है, तो उसने कहीं से भी वो फाइल को निकलवाया और रातों रात उस फाइल को क्लियर करा के अगले दिन रिटायर हो गया। तब मुझे समझ में आया कि देखो, हम सब एक जगह बैठकर जब एक प्रोजेक्ट के प्रति शुभ भावना देते हैं तो ऐसे कई सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं जो उसको पार हो जाते हैं, उसको कोई टचिंग आती है, उसको एक शुभ प्रेरणा होती है कि मुझे इस कार्य में मददगार बनना। तो फिजिकल में तो ईंट और पत्थर और ये तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन ऐसे करके बहुत सारे लोग इस कार्य में सहयोगी बन गए और पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं समझता हूं यही एक संस्था है जो इस तरह से मनसा सहयोग का एक एक्चुअल यूज करते। आज यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी बड़ा कार्य हो, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं हर एक को माइंड का मेंटल सहयोग देना, और हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इसके कारण पार हो गई, ओवरकम हो गई। नहीं तो ऐसा लगता है ये होगा कैसे, पता नहीं ये भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत सहज रीति से ओवरकम हो जाती। उसके बाद 95 में कंस्ट्रक्शन हो गया, तो 95 के बाद दादी जी का ये था, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ अगर ज्ञान सरोवर पांडव वन बोले तो शायद 1000 लोगों तक का एकोमोडेशन हमारे पास था। तो दादी जी को था कि नहीं, हमें और विशाल करना है क्योंकि और लोग आएंगे, सब लोगों के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था करनी। अभी किसी के आज अगर हमारे पास कोई है 1000 का एकोमोडेशन है तो हम क्या सोचेंगे? चलो हम कुछ बड़ा करें, 2000 का बनाए, या सोचेंगे 3000 का बनाए, या सोचेंगे 4000 का बनाए। लेकिन दादी जी का विजन इतना बड़ा था, दादी जी ने बोला कम से कम 10,000 का एकोमोडेशन होना चाहिए। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ माउंट में तो हो भी नहीं सकता, तो आबू रोड में जो हमारे तलहटी है वहां फिर एक शांतिवन करके 60 एकड़ पे कॉम्प्लेक्स बना जहां 10,000 लोगों का उस समय एकोमोडेशन बनाया और एक बहुत बड़ा हॉल बनाने की व्यवस्था की गई। तो 1996 में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का डायमंड जुबली था, क्योंकि कब ये स्थापन हुआ, 36, तो 60 इयर्स के बाद 1996 में इसका डायमंड जुबली ईयर था। तो एक बात हुई कि एक बड़ा हॉल जिसमें 20,000 से भी ज्यादा लोग आ सके। तो अब यहां आप देखना, देखो दादी जी की दृढ़ता, दादी जी का जो करेज है, दादी जी की जो डिटर्मिनेशन है, मार्च के महीने में 1996 मार्च में बाबा ने ये डायरेक्शन दिया कि इस साल एंड में, नए साल के, हम इस हॉल का उद्घाटन करेंगे। कौन सा महीना था? मार्च। और इनॉग्रेशन की डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 1996। हॉल अभी पेपर के ऊपर, और कौन सा हॉल बनाना है, विश्व में सबसे बड़ा पिलरलेस हॉल बनाना है। और ना कोई ये कोई गवर्नमेंट है, ना कोई इसके पास ऐसे रिसोर्सेस है, सभी लोगों के सहयोग से बनाना। किसी और को ऐसा प्रोजेक्ट बोलेंगे तो क्या सोचेगा वो, बोलेगा वही 10 साल तो देगा कम से कम। लेकिन दादी जी ने बोला अगर 31 दिसंबर की डेट डिसाइड हुई है तो 1996 पे उस हॉल का उद्घाटन होना है, और उस हॉल का हम नाम रखेंगे डायमंड हॉल। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कितने कम रिसोर्सेस, लेकिन वहां देखो दादी की दृढ़ता। और दादी ने पूरे सभी लोगों को, पूरी टीम को मिलाकर पूरा इतना हिम्मत, उमंग, उल्लास दिलाया। बीच में सेटबैक भी हुए, एक आध कैंटिलीवर वो भी घिरा, लेकिन दादी ने पूरे हिम्मत से और सभी लोगों को साथ चलाकर, 2 शिफ्ट हम 3 शिफ्ट करेंगे, रात दिन करेंगे, और 31 मार्च 1996 को उस हॉल का उद्घाटन हुआ। तालियां बजा लो, कितनी बड़ी बात। आज गवर्नमेंट भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट करे तो 10 बार सोचती। आप में से किसी ने देखा वो हॉल? कुछ लोगों ने तो देखा होगा। हाँ, तो ये सबसे बड़ा पिलरलेस हॉल है, और कई बार हमारे वहां 20,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। कल भी वहीं वो प्रोग्राम हुआ था, दादी का ही प्रोग्राम हुआ था, 15,000 लोग आए हुए थे। इसके बाद दादी जी का ये था कि इस जगह पे हम लोग बहुत VIPs को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। सबसे ज्यादा हमारे VIPs और सब हेडक्वार्टर सब तो दिल्ली में, लेकिन दिल्ली से माउंट आबू तक पहुंचना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। तो दादी जी का एक संकल्प था कि दिल्ली के पास में हम एक बड़ा सा ऐसे रिट्रीट सेंटर बनाए, जो ज्ञान सरोवर के मॉडल पर बनाए। तो ज्ञान दिल्ली के पास में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में मानेसर में 30 एकड़ पे ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना, और इसका कंस्ट्रक्शन 2000 से 2003 के बीच में हुआ। क्योंकि पहली बार एक बड़ा प्रोजेक्ट माउंट आबू हेडक्वार्टर के बाहर था, तो बहुत हद तक उसका कोऑर्डिनेशन माउंट आबू मुख्यालय के द्वारा वो प्रोजेक्ट हुआ। तो पूरी दादी जी की प्रेरणा, दादी जी के गाइडेंस में हुआ। 2003 में इसका उद्घाटन होना था, तो उद्घाटन के लिए किसको इन्विटेशन दिया? भारत के सबसे बड़े व्यक्ति को। कौन है भारत में सबसे बड़ा व्यक्ति? राष्ट्रपति। और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जब वो इन्विटेशन दिया, तो जो डेट हम देना चाहते थे उस डेट में वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उससे थोड़ा पहले अवेलेबल थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट बन रहा है और जिस हॉल में ये उद्घाटन होना है वो हॉल अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो जो डेट हमने दिया था उसमें भी बहुत टाइट था, फुल फोर्स लगाएंगे तो बनेगा, टाइम पर तैयार होगा और वो उद्घाटन का फंक्शन होगा। अब डेट प्रीपोन हो गई, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का डेट तो बार बार नहीं मिलेगा। तो बोला कि ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए, ओम शांति रिट्रीट सेंटर के लिए 3 लोग आने वाले थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के गवर्नर और भारत के राष्ट्रपति। तो कितना बड़ा फंक्शन था। मई 2003, आई थिंक 13 मई ऐसा कोई डेट था, उसके 10 दिन पहले कोइंसिडेंटली मेरा दिल्ली जाना हुआ, और मैं एक दिन के लिए गया था। तो मैंने सोचा 10 दिन के बाद इतना बड़ा उद्घाटन है तो मैं भी वो कॉम्प्लेक्स जरूर देख कर आऊं। तो मैं उधर से खास उधर गया मानेसर में, मैंने वो कॉम्प्लेक्स देखा। तो जिस हॉल में उद्घाटन होना था, ये हॉल इसके आगे दिखाया हुआ है, राइट साइड में जो दिखाया है वो ही हॉल है। तो वो भी करीब 1600 या 1800 का कैपेसिटी का है। तो इस हॉल में जहां उद्घाटन होना था, उस हॉल को जब मैंने देखा तो मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगे, क्योंकि उस हॉल को देखकर ऐसे लगा कि शायद 6 महीना लगेगा इसको बनने में। पूरा उसका रूफ नहीं था, वो चेयर्स नहीं थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये चल रहा था। अब मैंने सोचा ये राष्ट्रपति आ रहा है 10 दिन के बाद और ये हॉल तो इस कंडीशन में। तो वहां के मैंने कोई इंजीनियर भाई से पूछा, तो उसने बताया देखो ऐसा है, हम फॉल सीलिंग बना रहे हैं, इतना रेट है, इतने लेबर है, चेयर इस तरह से रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, रख रहे हैं। और उसने हिसाब बताया इस तरह से हम लोग तैयार हो जाएंगे। अब सब लोग काम कर रहे थे, कोई टेंशन में नहीं था, कोई स्ट्रेस में नहीं था, कोई किसी को डांट नहीं रहा था, कोई किसी के साथ 10 बार अच्छा बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। क्योंकि राष्ट्रपति के साथ एक प्रोग्राम और मुझे याद है, 2 साल पहले 2001 में इंडियन नेवी में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू थी जिसमें भारत का राष्ट्रपति सारे फ्लीट की रिव्यू करता। उसकी डेट कुछ 19 फरवरी 2001 थी। 19 फरवरी 2000 एग्जैक्टली एक साल पहले हमें कहा गया सारे शिप समुद्र में जाएंगे, वहीं खड़े होंगे जहां एक साल के बाद हमको खड़ा होना है, जिससे कि हम वो पानी कैसा है, टाइड कैसे, विंड कैसा है, वो सब देखे। एक साल पहले से सब पैनिक में, इतनी सारी मीटिंग, इतनी सारी कमिटीज बनाई, वो उसको बता रहा, वो उसके ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, वो उसके ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, एक साल से सब। और यहां 10 दिन पहले इतना बड़ा 3-3 डिग्निटरीज आ रहे हैं और कोई टेंशन में नहीं, कोई पैनिक में नहीं। तो तब मुझे लगा, देखो आध्यात्मिकता के कारण जो वैल्यूज है, कई बार लोग सोचते हैं ये शांति के समय तो ठीक है, लेकिन जब प्रेशर होगा, क्राइसिस होगा, तब ये नहीं चलेगा, तब ये ज्यादा चलता। उसमें ये लोग जैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो 10 दिन के बाद फिर क्या हुआ होगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य उद्घाटन हुआ। तो ये भी देखो, जो लोग काम कर रहे नीचे, उनमें जो ऊपर वाले दादी जी अगर उस समय है, नीचे वालों को जो डायरेक्शन दिया, तो दादी जी का पूरा फेथ है और ट्रस्ट है। एक बार उन्होंने कहा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो दादी जी का विश्वास है। ऐसा नहीं कि 10 बार पूछे, अरे ये क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, नहीं, पूरा फेथ है, पूरा ट्रस्ट है। दादी जी उनकी विशेषताएं देखती थी, उस विशेषताओं के आगे उनको आगे बढ़ती। उतना ही फिर जो नीचे जो थे वो भी उतनी जिम्मेवारी से करते थे कि हमारा कार्य हमें करना है, ऐसा नहीं कि हम, मुझे कोई बोलेगा फिर मुझे कोई वापस पूछेगा, नहीं। तो देखो कार्य करना, उसके भी दो तरीके होते हैं। हम लोग फौज में एक ही तरीका जानते हैं, जितना बड़ा कार्य उतना लोग ज्यादा टेंशन में, उतना स्ट्रेस में, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। दूसरा तरीका भी है और उससे इफेक्टिव तरीका, तो दादी जी ने वो हमको करके दिखाया। दादी जी यहां की चीफ थी, तो बहुत सारे दादी जी के सामने भी परीक्षाएं आती थी। कई लोग बोलते थे कि दादी जी आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के हेड हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होता। तो दादी जी बड़ा अच्छा एक आंसर देती थी। दादी जी कहती थी, मैं कभी भी अपने आप को हेड नहीं समझती, इसलिए मुझे हेडेक नहीं होता। बाकी संस्था में क्या होता है, व्यक्ति सोचता कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं हेड हूं, मैं हूं। दादी जी अपने आप को निमित्त रखती थी, बोलती मैं ट्रस्टी हूं, ये भगवान का कार्य है, मैं निमित्त होकर कर रहा हूं। तो वो कभी अपने आप को उस रीति से, वो एक परिवार के रूप में चलाती थी, भाई बहन है, परिवार है, परिवार के रूप में चलाती। दूसरा, क्योंकि परिवार में, इस परिवार में भारत के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कोई किस संस्कार का है, कोई किस प्रांत का है, सबके अपने वैरायटी संस्कार है, तो नेचुरल है वैरायटी संस्कार वाले आएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो दादी जी कहती थी, हम परिवार है तो हमको एक हारमोनी में रहना है। और उसके लिए दादी जी का बड़ा अच्छा फॉर्मूला था, मतलब कोई भी बात हो तो हार मान जाओ तो हारमोनी हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बात होती है तो उलझ जाते हैं उसके अंदर, फिर हम लोग नहीं मैं ही क्यों करूं, थोड़ा सा ईगो हो जाएगा, थोड़ा वो हो जाएगा। दादी जी का बड़ा सिंपल फॉर्मूला, तो बात होती है चलो हार मान लो, अपने आप हार मान लो। तो दादी जी जब पूरे जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना होता है तो नेचुरली सबको साथ लेकर चलती थी, तो मीटिंग होती थी। तो हमने देखा कि दादी जी कैसे कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी कोई अपना सजेशन देता था तो कभी भी दादी ऐसे काटेगी नहीं, अरे ये क्या बोल रहे हो, नहीं ये नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं करते, अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा सुंदर विचार, किसी की बात को काटती नहीं, सबके विचार सुनेगी, फिर उसके आधार पर दादी बोलेगी। और जब बताती थी दादी, तो दादी की बड़ी एक अच्छी विशेषता थी, दादी एक थर्ड पर्सन के रूप में बात करती थी, है ना, जब कोई डिसीजन लेना हो दादी ऐसे कहेगी कि दादी ने सब सुना और दादी को ऐसा लगता है कि इन सर्कमस्टांसेस में हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कहेगी मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, अपने आप को अलग कर देती, दादी ऐसा समझती है जैसे दादी कोई और है, दादी ऐसा समझती है कि दादी ऐसा समझती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो दादी का बोलने का स्टाइल भी बड़ा अच्छा था, सबको सम्मान देती, सबको रेस्पेक्ट देती थी और उस आधार पर दादी कार्य करती थी, तभी इतने बड़े संगठन को चला दे। तो देखो दादी जी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की हेड थी 1969 से लेके 2007 तक। इतने वर्षों में दादी जी जब कारोबार संभाला तो एक कंट्री में इसकी ब्रांचेस थी। दादी जी ने जब शरीर छोड़ा तो 120 कंट्री से भी ज्यादा ब्रांचेस ब्रह्मा कुमारीज की थी। उस समय कुछ हजार लोग होते थे, आज कई लाख लोग हैं। तो ये दादी का कुशल नेतृत्व है कि जो सबसे बड़ी वुमेन्स लेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी दादी चीफ रही और इतने वर्षों तक इतना अच्छा कार्यभार संभाला। तो एक एक्सेप्शनल और इंस्पिरेशनल लीडर रहे। फाइनली 2007 में, 25 अगस्त 2007 में दादी जी ने अव्यक्त हुई, दादी जी ने अपना शरीर छोड़ा। उसके दो तीन साल पहले तक थोड़ा दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना उससे पहले तक मैंने देखा दादी जी की कितनी 80s में उम्र थी, और नीचे का जो हॉल होता है उसमें 10-15 हजार लोग होते थे, और दादी की जो विशेषता थी देने की ना, तो जैसे प्रसाद देते ना, तो दादी सबको हाथ से प्रसाद देती थी। और आप सोचो 15 हजार को ऐसे देने में ही आपका हाथ दर्द होगा जो अभी 30s, 40s, 50s में। दादी जी 80s में थी, लेकिन दादी की विशेषता तो कितना वो कंटिन्यूस, तो दादी का हर समय था कि देना है, वो लगन में रहती थी। दादी जी ने जब शरीर छोड़ा तो उसके बाद फिर दादी जानकी, जो 1983 से एडिशनल चीफ थी, उन्होंने चीफ का कारोबार संभाला। लेकिन जब तक दादी थी तो दादी जानकी विदेश में, लंदन में ज्यादा रहती थी, क्योंकि वो विदेश का ज्यादा संभालती थी। जब भी मधुबन आती थी तो दादी जी से मिलते थे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जो नंबर वन है और जो नंबर टू है और नंबर थ्री है, वो सब अपने अपने अलग अलग दिशा में होते थे। लेकिन दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि, ये आपस में जब मिलते थे तो मिलना भी, उनका मिलन भी एक दृश्य था। कितना उनका एक दूसरे के प्रति रिगार्ड, सम्मान, दिल से प्यार, एक दूसरे को उस भावना से, इतना स्नेह से मिलते थे कि क्या बताएं। तो जब भी वो दादी जी आती थी तो आपस में उनका जो मिलन है, तो कोई भी संगठन में, कोई भी संस्था में जब सभी लोग मिलकर चलते तो वो संगठन बहुत प्रोग्रेस करता है। तो कल 25 अगस्त को दादी की पुण्यतिथि थी, तो हम सब की तरफ से भी दादी जी को बहुत बहुत याद और ट्रिब्यूट, इतनी बड़ी महान आत्मा को जिन्होंने इतना बड़ा ये जो संस्था का रूप दिया है और इतना बड़ा कारोबार फैलाया और जितनी सारी आत्माओं को जो फायदा हुआ, उस सब के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।